તારીખ 17/3/1994 શ્રી નિર્ભ્રાંત દર્શનની કીડી ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 69.
प्राप्ति की भावना यानी जीवन मरण से मुक्त होने की वेदना की भावना, उस भावना में संसार में से जगत में से कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा भोग ही चाहिए, ऐसा है भावना का प्रकार उत्पन्न होता है। तो ऐसी तीव्र लगन वाली जो भावना है वो मनुष्य जीव के हृदय भावों में जो राग रस होता है उसको शिथिल कर देती है। हृदय भाव रहेंगे, हृदय के कार्य भी जो होने योग्य है होते रहेंगे, किंतु इस मोक्ष का रस एकदम मंद हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा।
जो भाव की हृदय है, जो हृदय भाव की हृदय है, दादा की होते हुए हृदय
रागव भी तो अभी होते रहेंगे, जहां तक वितरागता नहीं उत्पन्न होगी वहां तक तो राग होते ही होता ही रहता है, किंतु राग का रस है वो ज्ञान को मलिन करता है। राग का तीव्र रस से रस ज्ञान मलिन होता है और राग रस मुक्त होने से ज्ञान में मनुष्य की भूमिका की निर्मलता जो होनी चाहिए ऐसी जो निर्मलता ज्ञान में आ सकती
है।
रात का राग तो नहीं, लेकिन चलता राग में भी रस नहीं, चलते हुए राग में भी रस नहीं, ऐसे राग रस को शिथिल करने वाली ऐसी भावना ज्ञान का निर्मलता का कारण बनती है। ज्ञान की निर्मलता का कारण बनने से सम्यक दर्शन की पूर्व भूमिका में जो ज्ञान यथार्थ प्रकार से निर्मल हुए तो समझ में विपर्यास नहीं होगा। विपर्यास नहीं होना अर्थात के सत्शास्त्र और सत्पुरुष के जो वचन है उसकी समझ यथार्थ रूप से होगी, कहीं भी विपर्यास नहीं होगा। ज्ञान का यथार्थ समझ वाला प्रकार आगे जाकर के शून्य ज्ञान में परिणमित होता है। ये ध्यान देने योग्य जो विषय है मनुष्य जीव को समझ समझ में फर्क हो सकती है, बात एक ही होती है और समझ में फर्क पड़ जाता है। क्यों? किसी को प्रेयर तत्व ज्ञानी कहना चाहते हैं उससे कुछ दूसरा ही समझ में आता है। तो किसी को कहता है जो कहना का अभिप्राय है वो समझ में आता है, सही समझ में आता है ऐसा लगता है, कुछ यथार्थता नहीं होती है। गैर समझ होना, सही समझ होना, इससे यथार्थता का एक तीसरा प्रकरण है। तो यथार्थता जो होती है वो आगे बढ़ करके सफेद हुआ में परिणमित होती है। समझ यथार्थ होने पर भी, समझ सही होने पर भी अयथार्थ हो सकती है। क्यों? इसलिए कि लक्ष्य गलत है, इसलिए ध्येय गलत है, इसलिए
ये सही
समझ का निर्णय नहीं किया हो तो समझ शास्त्र अनुकूल हो सकती है, क्षण समय ऐसी शक्ति है। कैसे हम दृष्टांत दे रहे हैं, सभी साल की ग्यारहवीं व्याख्या में है, द्वैतम असी दो करो क्षमा देखे वही जीवो। क्या कहा पंचाचार्य जी ने कि भूतार्थ स्वरूप के आश्रय से ही सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन होने का दूसरा कोई तरीका नहीं है, दूसरा कोई कारण नहीं है, दूसरे कोई कार्य पद्धति नहीं है। तो बात तो सही है, उसमें कोई अटपटी बात तो है ही नहीं, सीधी साधी बात है कि आत्मा का मूल स्वरूप का अगर संज्ञान आश्रय करता है तो वो सम्यक स्वरूप परिणमित हो जाता है। उसका शब्दार्थ भी बराबर है और भावार्थ भी बराबर है, पर शुद्ध में इसे कहें तो नयार्थ भी बराबर है, फिर भी ये समझ लिया यथार्थ हो सकती है। तो ये विचार विषय है कि ऐसे हम नहीं समझते हैं, ऐसी बात तो नहीं है, पर ऐसा समझने पर जो हमारा कार्य नहीं होता है वो बात उतनी सही है। तो फिर कोई ऐसी बात बाकी रहती है कि जिस कारण से हमारी समझ सफल नहीं हो रही है, ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो कौन सी बात रहती है कि सही समझ होने पर भी इसमें दो प्रकार है, यथार्थ भी हो सकता है और अयथार्थ भी हो सकती है। यथार्थ होगी तो आगे बढ़कर के वो सही समझ सम्यक में, सम्यक ज्ञान में परिणमित हो जाएगी, और वरना मुख्य उदाहरणा का विषय बनकर के फिर वो विस्मरण को प्राप्त हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा इस भाव में वो चालू रहता है स्मरण, अगर प्रकृति ठीक रही तो, वरना भगवान करने तो वो खत्म हो जाता है, विस्मरण को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यहां थोड़ा गहराई से विचार करना है कि यथार्थता कैसे आती है, कि यथार्थता यथार्थता हमारा लक्ष्य यथार्थ होने से, तदनुसार हमारी भावना यथार्थ होने से, तदनुसार हमारे हृदय भावों के परिणाम में राजरस शिथिल होने से, ज्ञान की निर्मलता आने से समझ यथार्थ होती है। इसके सिवा सूक्ष्म में समझ आती है, यथार्थता इसमें नहीं होती है।
मौलिक रूप से यथार्थता नहीं होती,
दर्शन को भी तीव्रता मान है, बराबर है, ये दर्शन में ही ज्ञान को मलिन करता है, तो मलिन ज्ञान में यथार्थता नहीं आती है, यही कारण है। इसलिए दर्शन हो मत होने का उपाय कहां से चालू होता है, इसका प्रारंभ कहां से होता है, तो कैसे आगे जाकर के अधिक मंद होता है, इसका प्रकाश चल रहा है। मामले में सब कुछ काम नहीं होता, इसलिए तो इस विषय को स्पष्ट करने का चल रहा है कि क्या लक्ष्य बराबर है, भावना तीव्र रूप से उठी है, जन्म मरण का अभाव की वेदना आई है, वेदना तो छिपी नहीं रहती, वेदना नहीं आती है तो क्या है, हम खाते हैं पीते हैं और तो जाते हैं आराम से, लेकिन एक दफे तो हमारा खाना पीना और नींद हराम हो जाना चाहिए, जब भी वेदना कही जाती है, अगर ऐसा नहीं हो तो समझ ये मात्र नहीं होगी और ये धारणा एक मात्र स्मरण का पूजा बन जाएगी और आगे जाकर के विस्मरण को प्राप्त हो जाएगी।
प्लस को दिया है, अभी 107 प्लस ही होगा, उसमें दिया है कि ज्ञान के साथ जब तक वैराग्य प्रस्फुटित नहीं हो रहा है ये साक्षता नहीं कही जा सकती, ये एकांत हो गया। दूसरा जो पक्ष होना चाहिए था, राग का मिटना या अभाव होना या वैराग्य की उत्पत्ति होना, ये दोनों जब नहीं हुआ, सोने का उदाहरण देकर के दिया कि सोने की शुद्धता में अशुद्धता कितनी घटी, वो साथ में हो तो सोने की शुद्धता
कितनी,
ज्ञान के साथ राग का कितना अभाव हुआ, ज्ञान के साथ वैराग्य कितना उदित हुआ, तो ये साधुता मानी जाए।
पहला कि मैंने मनुष्य की भूमिका में राग रस का आनंद होना उसी को वैराग्य कहते हैं, इस भूमिका का लेना दे, वैराग्य मैंने यहां घर छोड़ दे, धंधा छोड़ दे, ये बात नहीं है, ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, ये बात
बहुत तो कितना टूटा उसके साथ,
हमारा प्रवृत्ति वो की वो होने पर भी हमारा रस कितना है, ये सवाल है। और ये दोनों होने पर भी हमारा यथार्थ लक्ष्य है या नहीं है, प्री कंडीशन है कि हमारा लक्ष्य बना है कि नहीं बना है। जहां तक साध्य निश्चित नहीं होता, वहां तक किसी भी परिणाम को किसी के साधन पड़ने का उपचार नहीं लाना पड़ता, इसलिए साध्य हुआ है कि नहीं हुआ है, गुरुदेव ने इसलिए ये सिद्धांत को निरूपित कर लिया। तो तुमने शुरुआत किस तरह से की है कि नहीं की है, पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत की है कि नहीं की है, अगर नहीं की है तो फिर शुरुआत हुई नहीं है, हम नहीं मानते, तुम कुछ जो मानते हो शुरुआत नहीं हुई है, ये सिद्धांत नहीं बदलता है। तो इस सिद्धांत के द्वारा भावना और राग रस का बंद होना जिसको वैराग्य कह सकते हैं, तब ज्ञान की निर्मलता होगी, जो समझ को यथार्थता में एक नया स्थित पैदा होगा, यथार्थ समझ होगी और ये यथार्थ समझ है तो शास्त्र वचन को या ज्ञानी पुरुष के वचन को अपने आत्महित में लगा सके, इस प्रकार से समझ को अपनी तरह में ले जाएगा, तो ना समझ समझ में रह जाएगी, उसका अमल कुछ होगा। उक्त रूप से मुमुक्षु जीव का अगर प्रवेश न हुआ हो तो मुमुक्षु की भूमिका में इस प्रकार से प्रवेश नहीं हुआ हो तो अनादि के विपरीत संस्कार युक्त बुद्धि द्वारा शास्त्र का अध्ययन करने वाले की समझ में विपर्यास प्राय हो जाता है। थोड़ा हम बात रख लेते हैं, इसलिए कि कोई पढ़ते पढ़ते लक्ष्य में आ जाते हैं तो बात समझ जाती है, अर्थात उसे वस्तु का अन्यथा भाषित होता है, जो कल्पित है आत्मा के द्रव्य पर्याय की चर्चा करते हुए उत्पादन ध्रुव की चर्चा करते हुए या ध्रुव क्षेत्र का आकार भाव को समझते हुए कुछ न कुछ कल्पना बना लेते हैं, ऐसा फलित होता है कि भावना को भी समझिए यथार्थ है और ऐसे यथार्थ समझिए उक्त भावना को सचेत करते हैं। अब क्या है, दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाता है। भावना से ज्ञान में यथार्थता आई और ज्ञान की यथार्थता भावना को और तीव्र बनाती है। भावना के तीव्र उसको और बिल्कुल मिल जाता है और पोषण मिलता है। इस प्रकार भावना और ज्ञान एक दूसरे के पूरक होकर बनते हैं। यदि मनुष्य जीव की समझ में यथार्थता उत्पन्न न हो तो वह शुष्क ज्ञानी हो जाता है या ज्ञान में कुछ अंश में शुष्कता आने लग जाती है। वहां उस जीव का ज्ञान का सूक्ष्म को शास्त्र अनुसार अर्थगठन करने में समर्थ होता है तो कहते हैं कि मेरा अर्थ तो बराबर है, मेरे अर्थ में भूल नहीं है। सूक्ष्म की शक्ति से शब्दार्थ नयार्थ मतार्थ भावार्थ आदि शास्त्र के प्रकरण के अनुकूल जानने पर भी इस प्रकार की भावना के अभाव के कारण शुष्कता उत्पन्न होती ही है। इसलिए मुमुक्षु के परिणाम स्वरूप प्राप्ति की भावना से भीगा हुआ ऐसा रहना चाहिए। ये भावना बहुत बड़ी बात है। जबकि यथार्थ ज्ञान तो शुष्क ज्ञान का भेदक है, छेदक है और भावना का उत्पादक होता है। इस प्रकार मोक्षता की भूमिका में भावना का प्रकरण मुख्य है, भावना की भूमिका मुख्य है। स्वामी हो विभूषित श्री वचनामृत संख्या 21 में निम्न प्रकार कहते हैं, क्या कहते हैं कि चैतन्य की चैतन्य में से परिणमित भावना, इस भावना का बहुत सुंदर वचनामृत है। कहां से भावना उत्पन्न हुई है, चैतन्य में से उत्पन्न हुई है। किसकी भावना उत्पन्न हुई है, कि चैतन्य प्राप्ति की भावना उत्पन्न हुई है। अर्थात राग द्वेष में से उदित न होनी हो ऐसी भावना, तो वैराग्य का कारण बन गया इसलिए भावना हुई आत्मकल्याण के, ऐसा नहीं। या कोई सुराग के आवेश में आकर के ये भावना हुई, ऐसा भी नहीं। चैतन्य में से चैतन्य की परिणमित भावना ऐसी यथार्थ भावना हो तो वह भावना फलित होती ही है। ये भावना गैरंटेड फलित होती है, उसकी गारंटी देते हैं, इधर कुछ भी निष्फल पर जाती नहीं है।
स्वयं को पता चल जाता है,
पता चल जाता है स्वयं को, पता चल जाता है कि मेरी भावना सही है और ये कभी निष्फल जाएगी नहीं, निष्फल जा नहीं सकती है, ऐसी मेरी भावना है। इसका पता स्वयं को अवश्य चलता है, होता है नहीं, अवश्य पता चल जाता है। सर क्या जरूरत है बार बार की, न बार वालों की जरूरत है न घर वालों की भी जरूरत है अपनी भावना की। अपना मतलब अपने से है, दूसरे से अपना मतलब है। यदि नहीं फलित हो तो जगत को शून्य होना पड़े, जगत मैंने 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े ऐसा लिखा है। क्या नाश हो जाए, एक परमाणु का नाश नहीं होता है जगत में, एक परमाणु को भी कम नहीं होता है। अनंतानंद परमाणु का ये विश्व है, महापिंड महासुंदर पिंड, उसको शून्य हो जाना पड़ेगा। अगर भावना सफल नहीं होती तो उनको खत्म हो जाना पड़ेगा, ऐसा कहते हैं। क्या पहले भावना का अथवा तो इस द्रव का नाश हो जाए, परंतु ऐसा होता ही नहीं, ऐसा तो हो सकता है। चैतन्य के परिणाम के साथ कुदरत बनी हुई है, ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है, ये वस्तु स्वभाव है जिसका नाश हो सकता नहीं है। यह अनंत तीर्थंकरों की कही हुई बात है, हमारी भावना जो होती है उतना ही नहीं, अनंत तीर्थंकरों की ये बात कही हुई है, अनुभव में हम लोगों को भी आई हुई है और आज हमको भी आ रही है, ऐसा उसमें प्रतीत हो जाता है भावना मंत्री, उसी को भावना कहते हैं, बाकी सब बातें हैं, ऐसी चीज को भावना कहने में आता है। इस वचनाम के परिप्रेक्ष्य में हमने रूबरू में कुछ बहन को एक प्रश्न किया था कि आपने इस बात को इतना जोर दिया, मैंने जोर देने में कोई कसर नहीं रखी, तो इसके बैकग्राउंड में इसके पीछे आपके विचारधारा किस प्रकार की है वो जरा बताइए समझाइए कि कहां से ये बात उठी है आपको। उन्होंने बहुत सारी सीधी एक गिनती का विषय बता दिया कि कैसी है शंका ये विषय है कि देखिए कोई भी पाप करता है तो साथ में नरक तो पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता है, वहां पहुंचने लायक पाप करता है सब तो प्रणाली का, तो नरक में उसको जाने के लिए कोई हवाई जहाज में या किसी भी प्रकार के पैदल जाने का या दौड़ने का कोई जरूरत, शरीर का भी जरूरत नहीं पड़ता, आत्मा स्वतः असंख्या माइल मीलों का सफर कर देता है, एक समय में असंख्यात मिल से चला जाता है। अगर कोई उसके मृत्यु भाव करता है तो फिर स्वर्ग में भी बिना किसी साधन कोई यान मिलता नहीं, वायुयान में मिलता नहीं, जाता है वायु में कोई वायुयान उसको मिलता नहीं है, फिर भी वो चला जाता है, कुदरत स्वतः काम करती है, जिन चाहे नहीं चाहे उसकी गति एक समय में हो जाती है या ज्यादा से ज्यादा दो तीन समय में खत्म हो जाती है, बच जाता है। ये तो विकारी परिणाम है जीव के, क्या बोले थे कि ये तो जीव के विकारी परिणाम के साथ कुदरत बंधी हुई है, तो चैतन्य में से चैतन्य की भावना हो गई के साथ पर कुदरत नहीं बंधी हुई है, वो कैसे बनेगा तुम्हें बताओ कि कैसे बन सकता है, कि कभी बन सकता नहीं है, बनती हुई है कुदरत, इसके साथ तो ज्यादा बनती हुई है, अधिक तो बनती हुई है, इसलिए भावना एहसास होती है तो किसी के निष्फल होती
नहीं।
चैतन्य प्राप्ति की भावना मनुष्य की भूमिका के
साथ,
हमें हमारा स्वरूप ही चाहिए, इस जगत में से हमें कुछ और नहीं चाहिए, एक लक्ष्य से एक निष्ठा से उत्पन्न हुई ये भावना है, उसमें कहीं भी मलिनता नहीं है, कहीं भी कुछ भी उसमें कोई गड़बड़ नहीं है किसी भी प्रकार की, ऐसी शुद्ध भावना है, क्या शुद्ध भावना है, शुद्ध भावना के साथ कुदरत हमेशा हमेशा मिली हुई है, जगत को पलटना पड़ता है, भावना को पलटने का सवाल नहीं होता है। उपरोक्त वचनामृत में 21 नंबर का वचनामृत है, सात सौ 32 है उसमें 21 नंबर का है, उपरोक्त वचनामृत में यथार्थ भावना का स्वरूप बताया है की ऐसी भावना राग द्वेष में से हमको इतनी हुई है, किसी के साथ तकरार करने से नहीं हुई है, हमारे अंतर में से हुई है। अर्थात ऐसी भावना वाला जीव राग की प्रधानता में नहीं बरतता है, अपितु वह चैतन्य की प्रधानता में बरत रहा है। राग की प्रधानता में, द्वेष की प्रधानता में, मोह की प्रधानता में बरतना अलग बात है, और शुद्ध चैतन्य की प्रधानता आना कोई अलग बात है। अतः उसकी भावना सफल होगी, यह निसंदेह है। जीव की ऊपर ऊपर से वांछन विचार करने वाली भावना पर्याप्त नहीं है। क्या है हम लोग ये कहेंगे, हम तो भी भावना है, भावना है तो इतने दूर से आते हैं, शास्त्र वांछन करते हैं, हमारा समय तो बहुत कीमती है, बहुत बड़ा कारोबार है, फिर भी इधर आते हैं, घंटे डेढ़ घंटे बैठ जाते हैं, तो हमारी भावना तो है ही। किसके पर एहसान करते हैं? भगवान पर करते हैं। ये गिनती करते हैं, यही बताता है कि हमको शुद्ध प्रेम नहीं है। शुद्ध प्रेम कभी गिनती नहीं करता। कभी माँ ऐसी ऐसा कहेगी कि मैं मेरे बच्चा को हमेशा हमेशा खिलाया करती हूँ और मैं बाल पोस करके उसको बड़ा करती हूँ, ऐसा कहीं किसी को जाकर के दिखावा करेगी? हो सकता है क्या? अगर होता है तो वो सही शुद्ध प्रेम है ही नहीं, जिनसे हुई नहीं। जीव की ऊपर ऊपर से मानसिक विचार करने वाली भावना पर्याप्त नहीं है। अंतर से वेदना सहित भावना हो तो कार्य होता ही है, ऐसा अटल नियम है, अटल सिद्धांत है कि ये कार्य होता ही है। नहीं हो रहा है तो हमें देख लेना चाहिए कि हमारी भावना में कोई वेदना सहित बना है या ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं। अनंत काल ऊपर ऊपर से चलने वाले को किसी भी काल में कोई भी सफलता हो सकती नहीं है। अनंत काल पढ़ता रहे, सुनता रहे, आंचन करता रहे, करते रहो, उसे कुछ होने वाला नहीं है। ऐसी भावना के साथ गहरी लगन और सच्ची सत्कार होती है, ऐसे परिणाम में पूर्णता रूप साधु का लक्ष्य नहीं छूटता। ऐसे परिणाम होते हैं तो लक्ष्य कभी छूटता नहीं, और छूटे उसको लक्ष्य कहा भी नहीं जाता। आत्मा की जीव सर्वप्रथमों में इस प्रकार वर्तता है, अपने लक्ष्य समेत वर्तता है, लक्ष्य छोड़ के उसकी प्रगति कभी होती नहीं है, चाहे उन्हें कुछ भी प्रकार का हो, पूर्व कर्म के अनुसार लक्ष्य कभी छोड़ता नहीं है। इस संदर्भ में और भी एक बैंत्री का वचनामृत है, 51 नंबर का, आकाश पाताल भले एक हो जाए। क्या भावना में क्या ताकत है, कैसा विकल्प उठता है भावना वाले को, इसका एक नमूना है, ये सैंपल है, तो उसने अनुभव से लिखा हुआ है, उसकी भूमिका में वो देखे, और ऐसे उनको हुआ था तो लिख दिया, बोल दिया, ऐसी बात है। बात आकाश पाताल भले एक हो जाए, परंतु भाई को तो अपने ध्येय को मत चुकना। क्या कुछ भी हो जाए, गड़बड़ होगी ही, नहीं होगी ऐसा नहीं मानना, तो पहले से समझ लेना कि हमारी भावना के प्रतिकूल प्रसंग आएगा आएगा और आएगा, क्योंकि हमने प्रतिकूल परिणाम में ही कर्म बांधा है हमारा। पूर्व में प्रतिकूल परिणाम थे हमारे भावना से, हमारे परिणाम तो थे,
तो वो कर्मबंध का उदय आएगा कि नहीं आएगा, जब भावना चालू हुई तो उदय भी खड़ा हो जाएगा। तो कहते हैं कि उदय कैसा है कि आकाश पाताल हो जाए, कुछ भी हो जाए, भाई तुम अपने ध्येय को मत चुकना, बहुत मीठी भाषा से कहते हैं, भाई तुम अपने ध्येय को मत चुकना, अपने प्रयत्न को मत छोड़ना, आत्मार्थ को पोषण पोषण मिले वही कार्य करना, दूसरा हुए नहीं हुए इसकी चिंता मत करना, एक आत्मार्थ को पोषण मिले वही कार्य करना, जिस ध्येय पर आरूढ़ हुआ उसे पूर्ण करना, जिस ध्येय पर आरूढ़ हुआ हो उसको पूर्ण करके ही रहना, अवश्य तुझे सिद्धि मिलेगी। हम सबको गारंटी देते हैं कि तुझे सिद्धि मिलेगी, मिलेगी और मिलेगी। हमको पुष्टि मिले ऐसा कार्य करना, आत्मार्थ को पुष्टि नहीं मिले और संसार को पुष्टि मिले ऐसा नहीं करना।
क्या
उदय को खड़े रहने दो अपने स्थान पर। अब उदय है या हमारा गुलाम है, हम उदय के गुलाम नहीं है, ऐसे बात है क्या? उदय की गुलाम भी अनंत काल से करते आए हैं हम। अब बात कुछ और है, अब तो उदय हमारा गुलाम है, हम उसके गुलाम नहीं है, ऐसी बात है। यह शिक्षा भी है कि आत्मार्थ को पुष्टि मिले ऐसा कार्य करना, अर्थात सर्व कार्य में आत्मार्थ का लक्ष्य रखना और कहीं भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आत्मार्थ के प्रतिकूल जाना पड़े ऐसा न करना। सीधा तो प्रतिकूल आत्मार्थ के प्रतिकूल परिस्थिति में नहीं चले जाना परिणाम में, लेकिन परोक्ष रूप से मैंने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारे आत्मार्थ को विरुद्ध जाने के लिए हम तैयार नहीं है। ऐसा तीक्ष्ण और सूक्ष्म लक्ष्य बिंदु मुमुक्षु के ध्यान में होना चाहिए। किसी भी प्रतिकूलता स्व कार्य के करने में छूट न हो, ऐसी भावना की उग्रता होनी ही चाहिए, यानी यथार्थ भावना ऐसी उग्र ही होती है, और दिली पुछी होती नहीं है, पर यहाँ दिले दिला पूछा वाला का काम भी नहीं है। इस बार प्रस्तुत विषय के संबंध में इस बैंसरी के वचनाकरण में मुमुक्षु जीव के लिए अनेक पहलुओं से अत्यंत उपयोगी व मार्गदर्शित करने वाला निरूपण है। उक्त वचनामृत में और भी कुछ पहलू रहने हैं जिसका सारांश ऐसा है कि मुमुक्षु जीव को संसार के उदयमान प्रसंगों के प्रति कंटाला आता है, उपाधि लगती है और उसकी प्रवृत्ति करनी पड़े तो तीव्र अरुचि हो जाती ही है। ये बात इसमें छिपी हुई है कि आत्मा से प्रतिकूल ऐसा कार्य करने में जो भी उदय का कार्य करना पड़ता है उसमें उसको कंटाला आता है, फिर बोझा सा लगता है कि मुझे करना पड़ता है और वो तीव्र अरुचि से कर कहे तो भी तीव्र अरुचि से करता है। अनेक प्रकार के उदयमान विभाव भाव के प्रति अंदर से त्रास लगता है, क्या लगता है? भीतर में से बहुत त्रास हो जाता है कि क्या उदय चल रहा है, कैसे मेरे परिणाम चल रहे हैं, उसकी आतुरता उसको पुसाते नहीं है। ऐसा अंदर से त्रास लगे तो मनुष्यता के स्वभाव में जीव का संसार बल घटने लगे। संसार के प्रति जो बलवान परिणाम है, उत्साहित परिणाम है, रसवाले परिणाम है, ये घटने लग जाएंगे। और संसार के प्रति जीव की भावना निर्बल हो तब मार्ग अवश्य मिलता है, तब मोक्ष का मार्ग अवश्य मिलता है। जिसको संसार की रुचि है, बलवान परिणाम है संसार कार्य के, उनको मोक्ष मार्ग मिलना बहुत कठिन है या दुर्लभ है। जीव मात्र को जिस कार्य में अपना प्रयोजन सदता लगे उस कार्य में बहुत उत्पन्न हो जाता है, ये जीव का स्वभाव है। जहां भी जिस जीव को अपना माना हुआ प्रयोजन सदता लगे तो उस कार्य में उसका रास्ते बदल जाएगा। ऐसा परिणाम के विषय में यह सिद्धांत है, यह नियम है। इसी नियम के अनुसार मुमुक्षु जीव को निज प्रयोजन साधने योग्य परिणाम में रस आता है और अन्य सर्व विभाव में निरसता हुई जाती है, विभाव रस उसका उतर जाता है। क्योंकि अपना परिणाम अपना जो प्रयोजन है उसको मालूम पड़ गया। जिसका अपना प्रयोजन मालूम पड़ा कि मेरा आत्मकल्याण इस मार्ग में है, तो पूरे उद्यम से पूरे जोर से पूरे प्रयास से उसके पीछे लगेगा, उतना रस उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा हो सहज होता है तो एक और अधिक एक तरफ एक बाजू अधिक झुकने से दूसरी बाजू का झुकना वैसे ही छूट जाता है या कम हो जाता है। विभाव उतर जाता है जिससे वो विभाव के वेग में बहता है, विभाव के वेग में आता है, किंतु गुण ग्राही बनता है। क्या होता है, उनको गुण से उत्पन्न होने वाले चित्त की वांछा है। संसार में दोष से उत्पन्न होने वाला कल्पित सुख की वांछा उसको नहीं है। गुण से कैसे सुख उत्पन्न हो, और ऐसे गुण प्राप्ति के लिए कुछ भी करना हो सभी प्रकार का भोग देने के लिए वो तैयार है। ऐसी योग्यता के समय, ऐसी योग्यता में अगर कोई जीव आ गया, इस हद तक पहुंचा और यदि उसको प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष के वाणी मिले तो उसके अंतकरण में इस वाणी का बहुत गहरी असर पहुंचती है। अब क्या बात कह रहे हैं, भूमिका इस प्रकार की तैयार हो तो सत्पुरुष की वाणी की बहुत गहरे असर बहुत गहरी चोट लगती है। वरना सत्पुरुष की वाणी मिले तो रिमांड होकर के पीछे चले जाते हैं, भीतर में उसका प्रवेश होता। बहुत गहरी असर होती है और उसका चित कहीं अन्य जगह नहीं चौंकता, फिर उसका चित कहीं चौंकने वाला नहीं है। वरना क्या होगा कि चलो स्वाध्याय खत्म हुआ, जैसे एक लक खत्म हो गई, चलो जल्दी 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 ऑफिस पहुंचो, जल्दी काम करो, वो काम बाकी वो काम बाकी वो काम बाकी हाँ, उसको पता जैसे कैसे भी बता दिया। ये बात हो जाएगी, उसका चित अन्य कहीं नहीं चौंकता, अनेक प्रकार के शुभ परिणाम उसे होते हैं और ऐसे शुभ परिणाम होने पर भी उसे आग्रह नहीं होता, शुभ परिणाम का आग्रह नहीं होता। शुभ परिणाम होता है लेकिन शुभ परिणाम का आग्रह उसको नहीं होता है, आग्रह तो नहीं होता, बल्कि वह स्वयं के शोभक वृत्ति को चालू रखता है। शुभ परिणाम में चलते हुए भी आत्मकल्याण की शोधन वृत्ति उसको चलती है। एक भूमिका का प्रकार ही दूसरा होता है, वरना क्या होता है, तो वो भी शुभ क्रिया का आयोजन किया हुआ होता है, उस आयोजन के अनुसार मनुष्य जुड़ जाता है और सारे प्रश्न को शुभ भाव में पूरा कर लेता है। जबकि इस प्रकार की योग्यता वाला जीव का एक नया प्रकार उसमें चालू होता है, शुभ परिणाम का प्रसंग उसको आता है, शुभ परिणाम भी होता है, शुभ क्रिया भी होती है, लेकिन अंदर में आत्मकल्याण कैसे हो इसकी खोज चालू रहती है। बहुत गहराई से इस विषय को देखा है कुछ व्यक्ति ने या अनुभव किया है और उसको इस बात को लेकर के वो बात कह रहे हैं। शुभ परिणाम होने पर भी उसे आग्रह नहीं होता, वह स्वयं की शोधन वृत्ति को चालू रखता है। यदि कोई तत्वज्ञान के विषय में उसका उपयोग लगता है, तत्वज्ञान का अभ्यास भी करता है, तो भी भावना से भीगा हुआ हृदय होने से उक्त ज्ञान में शुष्कता पैदा नहीं होती। ऐसे जीव की पात्रता को प्रदर्शित करने वाले कुछ वैष्णव के वचनामृत 20 संख्या जो संख्या 20 है उसका यहाँ विशेष रूप से उल्लेखन करना योग्य है। क्या कहते हैं, इस प्रकार की पात्रता में कैसे परिणाम होते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी पर प्रदान की लालसा मुझे है ही नहीं, तो वो मिल जाए तो ठीक, वो मिल जाए तो ठीक, सभी आशाओं और अपेक्षाएं पर शून्य लगा दिया है, चौकड़ी लगा दिया है, कुछ नहीं चाहिए, मुझे आत्मा ही चाहिए, ऐसे तीव्र उत्सुकता जिसे हो उसे मार्ग मिलता है, ऐसे तीव्र उत्सुकता वाले को मार्ग मिलता है, ऐसे नहीं होता तो मार्ग भी नहीं मिलता है। कहां तक ये बात है, मुझे तो बात थोड़ा कुछ मिलेगा। अंतर की चैतन्य रुद्धि संबंधी विकल्प में भी वो नहीं रुकता। क्या चैतन्य की वृद्धि, उसमें जो रुकता रुकता नहीं है। दूसरी फुटबल की वृद्धि कई चक्कर एक बार ले जा, चैतन्य की वृद्धि कैसे होती है, वृद्धि एक चीज है, सिद्धि और चीज है, वृद्धि सिद्धि बोलते नहीं था। तो क्या है कि ऐसे तत्वज्ञान के अभ्यास करते करते साधना करते करते ज्ञान का सूक्ष्म बहुत निर्मल ज्ञान का सूक्ष्म बहुत बढ़ सकता है। चैतन्य की वृद्धि है वो भी हमें नहीं चाहिए। क्या
जाएगा
है नहीं चाहिए तो भी जाएगी, तो रहेगी तो रहने को आने दो, लेकिन हमें नहीं चाहिए, ये बात है। बहुत कुछ बता सके क्या है, तो हमारा स्वरूप चाहिए, ये ज्ञान का उगाड़ उगाड़ में हमें अटकना नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है, उस पर बिंदी लगा दी
चाहिए,
दूसरी चीज हमें नहीं चाहिए। प्रयोजन ज्ञान का नहीं है, प्रयोजन सुख का है, अतः दुर्द सुख का। प्रयोजन ज्ञान का नहीं है, प्रयोजन सुख होता है। अंतर के चैतन्य रूपी संबंधी विकल्प में भी वह नहीं रहता, यह ऐसा निष्प्रह हो जाता है। कितनी निष्प्रहता, पुद्गल की तो है ही, उतना निष्प्रह हो जाता है कि सिर्फ मुझे अपना अस्तित्व ही चाहिए, दूसरा कुछ मुझे नहीं चाहिए। ऐसे अंतर में जाने की तीव्र उत्सुकता जगे तो आत्मा प्रकट हो और प्राप्त हो। कभी आत्मा प्रकट हो और प्राप्त हो जाता है, अगर ऐसी उत्सुकता नहीं आती है तो शास्त्र पढ़ते पढ़ते ज्ञान वृद्धि का जो लोभ है वो तो मुमुक्षु को फंसा देता है। संसारियों उस पाप में फंसे हुए हैं, कुछ धर्म के क्षेत्र में आने वाले संसारियों वो भी संसारी है वो निकल फंसे हुए हैं, और कुछ धार्मिक क्षेत्र में आने वाले संसारियों वो भी संसारी है जो ज्ञान के उधार में जाते हैं। वो मोक्ष में मोक्ष मार्ग में आने वाले हैं नहीं है तो संसार में रुकेंगे। वचनार क्रमांक 46 में कहते हैं कि जीवन आत्मा में ही कर लेना चाहिए। कैसे शब्द निकले, जीवन को आत्मा में बना लेना चाहिए। हम गृहस्थी हैं, फलाने हैं, फलाने हैं, तो फलाने फलाने बहुत हुए, शायद बहुत रहे और दुखी भी बहुत हुए। जीवन को आत्मा में ही कर लेना चाहिए, भले ही उपयोग सूक्ष्म होकर कार्य नहीं कर सकता हो परंतु प्रकृति में ऐसा ही होता है कि यह कार्य करने से ही लाभ है, मुझे यही करना है, वह वर्तमान पात्र है। फिर 40 नंबर के वचनामृत में वर्तमान पात्रता के एक लक्षण बताया है, वर्तमान पात्रता का स्वरूप बताया है कि जो जीव वर्तमान में पात्र होता है भावी में गर्भित पात्रता वाले का बात नहीं कर दिया। पात्रता दो प्रकार से होती है, एक वर्तमान पात्रता, इसके में बहुत से अलग अलग लक्षण होते हैं, और एक गर्भित पात्रता होती है। तो यहाँ वर्तमान पात्रता वाले के जो लक्षण होते हैं उसमें से एक अच्छा लक्षण का निर्देश है, जीवन आत्मा में ही कर लेना चाहिए। उसको यही लगता है कि मेरा जीवन मेरा आत्मा में मिला है, आत्मभाव में रहना है, अन्य भाव में नहीं रहना है। भले ही उपयोग सूक्ष्म होकर भीतर में भी नहीं जा रहा है, सूक्ष्म के सूक्ष्म स्वभाव को नहीं ग्रहण कर सकता है, परंतु उनको विश्वास है, प्रतीति में विश्वास है, उस प्रकार से एक तसल्ली है कि मुझे यही कार्य करना है, इसी कार्य में मेरा लाभ है, मुझे दूसरा कुछ करना नहीं है। जिसको दूसरा कुछ नहीं करना है वो वर्तमान पात्र है। आत्मा जीव को स्वयं का जीवन आत्मा में बना लेने की कैसी भावपूर्ण प्रेरणा है, यानी कि कैसी प्रेरणा है और कैसी भाव से भरी हुई प्रेरणा है कि अपने जीवन को आत्मा में बना लेना। ऐसे आत्मार्थी को केवल अपनी आत्मा ही चाहिए और इस विश्व में से कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसी दृढ़ वृत्ति वाला सरल परिणामी, दृढ़ वृत्ति वाला और सरल परिणामी जीव निज दृढ़ स्वभाव की पहचान करने योग्य पात्रता वाला बन जाता है। पहचान होना यही सबके अंग है, यही समय दर्शन का अंग है, यही मूल कारण है। समय दर्शन का बीज यहाँ पर आया है स्वरूप की पहचान, तो ऐसी स्थिति में आने वाले को स्वरूप की पहचान होना योग्य है।
ठीक
है, ऐसे प्रश्न होने चाहिए कि एक ही प्रकार के परिणाम में कोई दुर्गुण किसी को लग जाए, किसी को सदगुण लग जाए। वास्तव में भेद रेखा कुछ होती है दुर्गुण की और सदगुण की। जैसे उदार और उड़ाव दो एक नहीं है, जो उड़ाता है वो उड़ाता है, उड़ाता उसको सदगुण में नहीं आती है, और जो उदारता है वो सदगुण है, उसमें उड़ाव उतना नहीं है। ऐसे दृढ़ता होना, मक्कमता होना ये सदगुण है, और धर्म होना ये दुर्गुण है।
क्या नहीं
हक नहीं है, दृढ़ता है वो हक नहीं है, पर हक है वो दृढ़ता नहीं है। भेद रेखा है दोनों के बीच में, भेद रेखा है, और भेद रेखा को समझना। ऐसे बहुत सी बातें हैं, तो उसमें गलत फहमी होने का बहुत अवकाश है। क्या कहते हैं कि ऐसे दृढ़ वृत्ति वाला सरल परिणामी जीव निज दृढ़ स्वभाव की पहचान करने योग्य पात्रता वाला होता है। उसको अपने स्वरूप की पहचान होना दूर नहीं है, वो तो पहचान कर सकता है, उसमें पहचान करने की योग्यता उसमें आ गई है। यहाँ पर पात्रता दो प्रकार की होती है, उसका थोड़ा संक्षिप्त में विवरण किया है। गर्भित पात्रता एवं वर्तमान पात्रता, ऐसे दो प्रकार की पात्रता होती है। गर्भित पात्रता तो सामान्य मनुष्य की समझ के बाहर की चीज है, आम जनता गर्भित पात्रता वाले को नहीं पकड़ सकते। कुछ विशेष प्रज्ञावंत ज्ञानी होते हैं, ये गर्भित पात्रता का और पात्रता वालों को भी पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इस जीव के वर्तमान परिणाम को अच्छे लोगों को नहीं दिखेंगे, लोगों को अच्छा नहीं दिखेगा, पर दिखाओगे ऐसा ही है। लेकिन जो गर्भित पात्रता इसमें है, जो आगे जाके करके उसको आत्मलाभ में कारण हो सकते हैं। वर्तमान पात्रता वाला तो अभी हो रहा है, अंतर में उसके जो चलते हुए भाव कुछ और है, और उसकी पात्रता को कुछ और है भीतर में, तो उसको ज्ञानी ज्ञान में लेते हैं कि इसके परिणाम वर्तमान में पात्रता वाले नहीं दिखते हैं, लेकिन है गर्भित पात्र के है कि पात्रता कभी बाहर आकर के उसको आत्म कल्याण में कार्यान्वित कर देगी।
सबकी लोग बड़ी
है,
सबकी लोग बड़ी है,
हाँ सबके लोग बड़ी है, उनको बेहतर ज्ञानी को आते हैं, दूसरे का ये विकास नहीं है। समझने
का गर्भित पात्र से धोखा हो जाए,
नहीं उनको पता नहीं है, उनको भी पता है दूसरे को भी नहीं पता है, ये तो ज्ञानी के ज्ञान का विषय है, उतनी ही बात है। गर्भित पात्रता तो सामान्य मनुष्य की समझ के बाहर है, वह तो ज्ञानियों के सापेक्ष ज्ञान का विषय है, तो विशेष प्रज्ञान ज्ञानी होते हैं उनका विषय है। ये बात हमने लिखी है, कुछ गुरुदेव के परिपेक्ष लिखी हुई है, तो प्रश्न ऐसे बने हैं इससे हमको ये मालूम है, इसलिए पूरा निर्देश कर दिया है। तो उत्तर वचनामृत में आत्म कार्य के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध आत्मा में जीवन हुआ है, ऐसे एकांत आत्मा सत्ता के भाव को वर्तमान पात्र ऐसा संबोधन दिया है। कैसा है एकांत आत्मसत्ता के भाव जो है वो वर्तमान पात्र है, उसको प्रकट पात्र का सूचक विशेषण द्वारा किया गया है। वर्तमान पात्रता वाला मनुष्य अपनी यथार्थ समझ को शीघ्र प्रयोग में लेने का प्रयास करता है, वो एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। पात्रता तो हुई, अब क्या हो रहा है, तो वो अगली चरण में आ जाएगा। पात्रता आते ही जो बात उनको समझ में आती है उनको अमल करने का प्रयास इसका चालू हो जाएगा। सुनते ही प्रयास चालू हो जाना चाहिए, तो नतीजा कहते हैं सुनते ही प्रयास चालू हो जाना चाहिए कि वर्तमान पात्रता का प्रयोग। पात्रता को बुलाए प्रदर्शन का ऐसा शहर होता है पात्रता के विषय में एक विशेष लक्षण सूचित करने वाला, तो विशेष का बात है कि उनको सुन लिया समझ लिया चलो ठीक हो गया, पहले नहीं समझते थे अभी समझ में आ गई बात, हो गया पूर्ण विराम। यहाँ तो अर्ध विराम भी नहीं आता है, पूर्ण विराम का समाज नहीं है, अल्प विराम भी नहीं आता है, यहाँ तो एक नया उल्लास पैदा होता है कि अरे इस बात मेरी समझ में आई, अब तो मेरे मेरे कार्य का प्रारंभ कर देना चाहिए, अभी से अभी अभी करना चाहिए, अभी चालू कर देना चाहिए। ऐसा एक नया उल्लास पैदा होता है अमलीकरण का, यही पात्रता का वर्तमान पात्रता का सूचक होता है। ऐसे पात्र के विषय में और भी कई विकार हैं, वो यहाँ आगे लिखेंगे।
चंद्र के हाथ के चर्चा सभी।